नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रॉल्फ डोबिली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली निर्णय लेने में बाधा डालने वाली मानसिक गलतियों का संक्षिप्त लोकप्रिय परिचय है पवो। यह पारंपरिक अर्थ में क्रमबद्ध आत्म सहायता पुस्तक नहीं, बल्कि 99 छोटे अध्यायों में व्यवस्थित संज्ञानात्मक पक्षपातों, तार्किक भ्रमों और सामाजिक विकृतियों का संग्रह है। डोबेली का केंद्रीय तर्क है कि हमारा मस्तिष्क अक्सर तेज, सहज और ऊर्जा बचाने वाले निष्कर्ष निकालता है। ये प्रवृत्तियां कुछ पुराने सामाजिक और विकासवादी संदर्भों में उपयोगी रही होंगी, लेकिन निवेश, काम, रिश्तों और सार्वजनिक बहस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में वे निर्णय की गुणवत्ता घटा सकती हैं। पुस्तक हर त्रुटि को छोटे उदाहरणों, परिचित परिस्थितियों और व्यवहार विज्ञान से जुड़ी व्याख्याओं के सहारे समझाती है। इसका उद्देश्य पाठक को पूर्णतः निष्पक्ष विचारक बनाना नहीं है, क्योंकि ऐसा होना व्यावहारिक नहीं, बल्कि अपनी सोच के सबसे आम जालों को पहचानने योग्य बनाना है। इसकी उपयोगिता खास तौर पर उस क्षण में उभरती है जब कोई निष्कर्ष बहुत स्पष्ट, बहुत सुविधाजनक या भावनात्मक रूप से संतोषजनक लग रहा हो। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले पुष्टिकरण पक्षपात और असहमत साक्ष्य की सक्रिय खोज। पुष्टिकरण पक्षपात वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी पहले से बनी राय के अनुकूल सूचना को अधिक महत्व देता है और विरोधी सूचना को अनदेखा, कमतर या संदिग्ध मान लेता है। डोबेली इसे केवल जानकारी की कमी नहीं, बल्कि जानकारी चुनने की समस्या के रूप में रखते हैं। कोई निवेशक अपनी पसंदीदा कंपनी के अच्छे संकेत खोज सकता है, कोई प्रबंधक अपनी योजना का समर्थन करने वाले आंकड़े देख सकता है, और कोई व्यक्ति अपने सामाजिक विश्वासों से मेल खाते समाचारों को ही विश्वसनीय समझ सकता है। ऐसे में अधिक पढ़ना भी बेहतर निर्णय की गारंटी नहीं देता, क्योंकि चुनी हुई सामग्री पूर्वाग्रह को और मजबूत कर सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत है कि व्यक्ति को जानबूझकर ऐसे तथ्य और तर्क खोजने चाहिए जो उसकी प्रिय धारणा को गलत सिद्ध कर सकें। यह प्रक्रिया असुविधाजनक होती है, क्योंकि पहचान और राय अक्सर जुड़ जाती है। फिर भी निर्णय से पहले प्रश्न उपयोगी है, कौन सा प्रमाण मुझे अपना निष्कर्ष बदलने पर मजबूर करेगा? यदि इसका ईमानदार उत्तर नहीं मिलता तो व्यक्ति शायद जांच नहीं, समर्थन खोज रहा है। यह अध्याय आलोचनात्मक सोच को नकारात्मकता नहीं, बल्कि अपने ही निष्कर्षों की गुणवत्ता जांचने की अनुशासित आदत के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, डूबत लागत भ्रांति और गलत निर्णय से बाहर निकलने की क्षमता। डूबत लागत भ्रांति बताती है कि लोग किसी काम, परियोजना या संबंध में पहले लगाए गए समय, धन और श्रम के कारण उसे जारी रखते हैं, भले ही आगे बढ़ना अब लाभकारी न हो। डोबेली के अनुसार बीता हुआ खर्च वापस नहीं आ सकता, इसलिए वर्तमान निर्णय का आधार केवल भविष्य की संभावनाएं और आगे की लागत होनी चाहिए। फिर भी लोग यह मानने लगते हैं कि छोड़ देना पिछले निवेश को व्यर्थ स्वीकार करना है। यही मानसिक दबाव कमजोर व्यवसायों में अतिरिक्त धन लगाने, अप्रभावी योजनाओं को बचाने या अप्रिय गतिविधि में वर्षों बने रहने को प्रेरित कर सकता है। समस्या का तंत्र भावनात्मक है। व्यक्ति नुकसान से बचना चाहता है और अपनी पूर्व पसंद को सही सिद्ध करना चाहता है, लेकिन जारी रखने से पुरानी लागत नहीं मिटती, केवल नई लागत जुड़ती जाती है। पुस्तक का उपयोगी परीक्षण यह है कि यदि आज आप शून्य से शुरुआत कर रहे होते तो क्या यही विकल्प चुनते? यदि उत्तर नहीं है तो केवल अतीत के निवेश के कारण बने रहना तर्कसंगत नहीं। यह सिद्धांत हर स्थिति में तत्काल छोड़ने का आदेश नहीं देता। भविष्य में वास्तविक लाभ की संभावना, जिम्मेदारियां और विकल्प की लागत भी देखनी होती है, पर यह अतीत को भविष्य के निर्णय का अनुचित मालिक बनने से रोकता है। तीसरा, उत्तरजीविता पक्षपात से सफलता की अधूरी तस्वीर। उत्तरजीविता पक्षपात तब पैदा होता है जब हम केवल बचे हुए दिखने वाले या सफल उदाहरणों को देखते हैं और असफल, गायब या अप्रकाशित उदाहरणों को भूल जाते हैं। डोबेली दिखाते हैं कि सफलता की कहानियां आकर्षक होती हैं, इसलिए मीडिया, बाजार और सामान्य बातचीत में वे अनुपात से अधिक दिखाई देती हैं। किसी प्रसिद्ध उद्यमी की आदतें, सफल निवेशक की रणनीति या शीर्ष कलाकार की दिनचर्या देखकर लोग उन्हें सफलता का कारण मान सकते हैं, लेकिन वैसी ही आदतों और रणनीतियों वाले असंख्य असफल लोगों का रिकॉर्ड अक्सर सामने नहीं होता, इसलिए दिखने वाले विजेताओं से नियम बनाना जोखिमपूर्ण है। यह त्रुटि विशेष रूप से निवेश, करियर सलाह और व्यापारिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण है, जहां चयन की पूरी प्रक्रिया समझे बिना केवल अंतिम विजेता को देखना भ्रम पैदा करता है। अधिक स्पष्ट सोच के लिए प्रश्न बदलना पड़ता है। केवल यह न पूछें कि सफल लोगों ने क्या किया, बल्कि यह भी पूछें कि असफल लोगों ने क्या किया, कितने लोगों ने वही तरीका अपनाया और किन बाहरी परिस्थितियों ने परिणाम को प्रभावित किया। इस तरह पुस्तक सफलता को नकल करने योग्य सरल सूत्र के बजाय संभाव्यता, चयन और संयोग से प्रभावित परिणाम के रूप में देखने को कहती है। यह दृष्टि निराशावादी नहीं बल्कि अत्यधिक आत्मविश्वास के विरुद्ध एक आवश्यक सुधार है। चौथा, एंकरिंग प्रभाव और शुरुआती संख्या का छिपा प्रभाव। एंकरिंग प्रभाव में पहली सुनी या देखी गई संख्या बाद के निर्णयों के लिए मानसिक आधार बन जाती है, भले ही वह संख्या वस्तुनिष्ठ रूप से अप्रासंगिक हो। डोबेली के लिए यह दिखाता है कि निर्णय केवल तथ्यों से नहीं सूचना के क्रम और प्रस्तुति से भी प्रभावित होता है। किसी वस्तु का पहले बताया गया ऊंचा मूल्य बाद की छूट को असाधारण सौदा प्रतीत करा सकता है। बातचीत में पहली मांग, वेतन पर चर्चा में शुरुआती प्रस्ताव या अनुमान लगाते समय सामने आया कोई आंकड़ा अंतिम निर्णय को अपनी ओर खींच सकता है। व्यक्ति को लगता है कि वह स्वतंत्र तुलना कर रहा है, लेकिन उसका आकलन पहले संकेत के आसपास घूमने लगता है। एंकर की ताकत इसलिए बढ़ती है कि मन जल्दी संदर्भ चाहता है। अनिश्चितता में कोई भी प्रारंभिक संख्या उपयोगी आरंभिक बिंदु जैसी लगती है। इससे बचने का व्यावहारिक तरीका है कि बाहरी प्रस्ताव देखने से पहले अपनी स्वतंत्र सीमा अनुमान या मूल्यांकन तैयार किया जाए, जहां संभव हो कई स्रोतों से आंकड़े लिए जाएं और मूल्य के पीछे की वास्तविक तुलना देखी जाए। बातचीत में पहला अंक सुनने के बाद भी उसे तथ्य नहीं रणनीतिक संकेत मानना चाहिए। पुस्तक यह नहीं कहती कि हर शुरुआती जानकारी बेकार है, बल्कि यह सिखाती है कि उसके प्रभाव और उसकी विश्वसनीयता को अलग अलग परखा जाए। अंत में हानि से विरक्ति, सामाजिक तुलना और निर्णय की भावनात्मक लागत, पुस्तक के अनेक विचार बताते हैं कि निर्णय में भावना अक्सर तर्क के बाद नहीं तर्क के भीतर काम करती है। हानि से विरक्ति इसका प्रमुख उदाहरण है। समान मात्रा का नुकसान सामान्यतः उतने ही लाभ से अधिक तीव्र महसूस होता है। इस कारण व्यक्ति खराब निवेश बेचने से बच सकता है, जरूरी बदलाव टाल सकता है या छोटे संभावित नुकसान से बचने के लिए बड़ा अवसर छोड़ सकता है। डोबेली सामाजिक तुलना की विकृति पर भी ध्यान दिलाते हैं। लोग अपनी स्थिति का मूल्य किसी स्थिर मानक से कम और दूसरों की उपलब्धियों से अधिक तय करते हैं। इससे संतोष घट सकता है और ऐसे विकल्प चुने जा सकते हैं जिनका वास्तविक उपयोग या व्यक्तिगत अर्थ कम हो। दोनों पक्षपात मिलकर निर्णय को विकृत करते हैं। व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरत के बजाय हारने की आशंका, प्रतिष्ठा की चिंता या दूसरे से पीछे रह जाने की बेचैनी के अनुसार काम करने लगता है। इसका समाधान भावना मिटाना नहीं है, क्योंकि वह संभव भी नहीं। बेहतर उपाय है निर्णय के मानदंड पहले स्पष्ट करना। क्या विकल्प का मूल्य वास्तविक लाभ से तय हो रहा है या केवल नुकसान के डर और तुलना से? दीर्घकालिक लक्ष्य, स्वीकार्य जोखिम और पर्याप्तता की निजी परिभाषा तय होने पर क्षणिक भावनात्मक संकेतों का दबाव कम किया जा सकता है। यह पुस्तक की व्यापक सीख से मेल खाता है। जागरूकता अपने आप समाधान नहीं पर बेहतर विराम का आरंभ है। निष्कर्ष में, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो व्यवहार विज्ञान की भारी अकादमिक भाषा में जाए बिना अपने निर्णयों की कमजोर कड़ियां समझना चाहते हैं। प्रबंधक, उद्यमी, निवेशक, विद्यार्थी और रोजमर्रा के जटिल विकल्पों से जूझने वाले लोग इसमें तुरंत पहचाने जा सकने वाले ढांचे पाएंगे। इसकी व्यावहारिक शक्ति किसी एक महान सिद्धांत में नहीं बल्कि छोटे मानसिक जालों की व्यापक सूची में है। छोटे स्वतंत्र अध्याय पाठक को अपनी जरूरत के अनुसार किसी अवधारणा पर लौटने, उसे बातचीत, खरीदारी, योजना या जोखिम के निर्णय पर लागू करने की सुविधा देते हैं। यही संरचना इसे लंबे तर्क आधारित व्यवहार विज्ञान ग्रंथों से अलग बनाती है। पुस्तक संज्ञानात्मक पक्षपातों की अंतिम या पूर्ण वैज्ञानिक संदर्भ सामग्री होने का दावा नहीं करती और इसकी संक्षिप्तता के कारण कुछ विषय सूत्रात्मक लग सकते हैं। इसलिए इसे कठोर नियमों की पुस्तक के बजाय आत्म परीक्षण के उपयोगी मानचित्र की तरह पढ़ना अधिक उचित है। इसका शीर्षक जितना वादा करता है उतनी पूर्ण विधि यह नहीं देता, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण काम करती है। यह उन क्षणों को नाम देती है जहां मन आत्मविश्वास, आदत, भय, भीड़ या आकर्षक कहानी के कारण गलत मोड़ लेता है। समान श्रेणी की पुस्तकों की तुलना में डोबेली की विशिष्टता उसकी संक्षिप्तता, उदाहरण केंद्रित प्रस्तुति और विषयों की असाधारण चौड़ाई है। सबसे अधिक लाभ उस पाठक को होगा जो हर अध्याय के बाद अपने हाल के निर्णयों में उसका एक वास्तविक उदाहरण खोजे और अगली बार निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ी जांच जोड़े। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रोल्फ डोबेली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।